ओम शांति। जो 7 तारीख की मुरली थी उस पर मुझे टॉपिक मिला था कि मासी का घर। तो पहले तो हम देखेंगे कि मासी क्या होती है। तो मासी माना स्नेह की वो हाईएस्ट लेवल है, स्नेह प्यार, एक उच्च कोटि का प्यार और एक हक का स्थान होता है। किस किस ने इसका अनुभव किया है? अरे वाह, मैंने, हाँ है। तो हर एक का अपना अपना अनुभव होता है कि ज्ञान में आते समय कोई इजीली आ जाते हैं, सब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और कईयों को बहुत लौकिक संबंधी है, ऑफिसेस है, वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती। वैसे लौकिक में मासी हमारे नज़दीक ही रहती थी और उनका बहुत प्यार मिला। तो वो मम्मी पापा को तो विरोध करते थे कि आप वहाँ नहीं जाओ करके, कि वहाँ तो सभी जाति के लोग आते हैं और आप वहाँ जाके हमारी इज्जत कम नहीं करो, तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसे वो बोलते थे। विरोध उनको करते थे लेकिन हमें तो बहुत प्यार मिलता था। देख तुम्हारी मम्मी वहाँ जाती है, देख उसके कारण ऐसा होता है। तो मौसी का बहुत प्यार मिला। और एक कहावत भी है, दो पार्ट है मौसी के। तो मराठी में वो कहावत ऐसी है कि आई मरावी मौसी उरावी, मीन्स माँ मर जाए लेकिन मौसी बचनी चाहिए। क्योंकि माँ मरे तो चलेगा लेकिन मौसी नहीं जानी चाहिए। मतलब इतना प्यार मौसी से मिलता है, इतना मौसी से पनिशमेंट नहीं मिलती है, उससे सिर्फ प्यार मिलता है। लेकिन ये दूसरी जो साइड है वो भी मुझे देखने को मिली, क्योंकि पिताजी की माँ जो है वो उनके बचपन में ही शरीर छोड़ दिया था। तो सचमुच उनके मौसी और उनके जो मामा थे वो इतने दूर चले गए कि उनको उनका प्यार कभी नहीं मिला। माँ ने शरीर छोड़ने के कारण उनको अपने बहन और छोटे भाई को संभालना पड़ा, उनके कपड़े भी धोने पड़े बचपन से। तो देखो जब सचमुच परिस्थिति आती है तो ऐसा कुछ होता नहीं, ये मौसी साथ छोड़ देती है। तो ये भी देखने को मिला। और उनका ज्ञान में आने का कारण भी यही था कि उनको वो जो माँ का और मौसी का प्यार नहीं मिला था, जो सेंटर पर आने के बाद उनको जो ईश्वरीय पालना मिली और उसके कारण वो पक्के बने और उसके कारण हम आ गए। तो मौसी के दोनों रूप हमने देखे। अभी बाबा जो है, साकार मुरली में भी बहुत बार कहा है कि मौसी का घर नहीं है, मौसी का घर, मासी का घर नहीं है। तो ऐसी इतनी सारी बातें हैं कि एक बुक बन जाएगी इसके ऊपर। तो मैंने तो 30 बातें निकाली हुई है उसमें से। तो अभी किस किस को कौन कौन सी बात है पहले उस पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो ये जो मासी है, 7 तारीख के मुरली में बाबा ने कहा है कि श्री लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं। हाँ, मतलब इतना आसान, मासी का घर माना आसान होता है ना, जब मम्मी डांट देती है, मारती है, तो तुरंत मासी के, कठिन, बहुत कठिन। अभी जब भी मम्मी डांट देती थी तो क्या होता था कि मासी के घर चला जाता था। तो मासी का घर माना इजी, इधर कुछ होता है, माँ डांट देती है तो मासी के घर चले जाना, ये तो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। एक बार एग्जाम के दिन थे, एग्जाम जब भी स्कूल नहीं जाना है, पेट में दर्द होता था, तो फिर मासी के यहाँ जाना। तो मासी क्या करती थी, मुझे स्कूल में छोड़ने मम्मी कभी आई नहीं, मासी आती थी, तो वो प्यार से चॉकलेट देके वहां स्कूल बाहर बैठी भी रहती थी कि अभी स्कूल के बाद मैं आपको लेके जाऊंगी। तो एक बड़ा आधार होता है मासी माना, बहुत इजीनेस होता है। हर बार मासी का मैंने यूज प्रैक्टिकल में किया हुआ है। तो पहली बात हम देखेंगे, पहला पॉइंट कि बाबा ने कहा है कि इस देह को भूलना मासी का घर नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि आत्मा को सबसे प्यारी चीज कौन सी है, खुद की देह। तो इस खुद के देह को भूलना बाबा ने कहा है कि मासी का घर नहीं है। सेकंड में बाबा ने कहा है कि गीता का भगवान शिव है, इस बात को समझ लेना, ये कोई मासी का घर नहीं है। थर्ड पॉइंट जो हमने पहले ही लिया था कि जो 7 तारीख के मुरली में है कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण ये ऊंच पद पाना मासी का घर नहीं। चौथा है कि बाप को अपना बनाना, ये कोई मासी का घर नहीं है। कह तो देते हैं कि एक शु बाबा मेरा दूसरा न कोई, कह तो दिया, लेकिन दूसरे बहुत है, उसकी लिस्ट निकालनी पड़ेगी और फिर वो उस एक बाप को अर्पण करनी पड़ेगी। फिर पांचवा है कि हम आत्मा है यह निश्चय करना मासी का घर नहीं। निश्चय, हम आत्मा है, मैं एक आत्मा हूं, ये पक्का निश्चय होना ये मासी का घर नहीं है। छठा है कि बाप का बनकर वारसा लेना या बाप का वारिस बनना, ये कोई मासी का घर नहीं है। हाँ, बाप को वारिस बनाना, ये भी मासी का घर नहीं है। सातवा पॉइंट है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, वह कभी विनाश नहीं होना है, यह समझना मासी का घर नहीं है। फिर आठवा पॉइंट है निरंतर याद, निरंतर याद में रहना कोई मासी का घर नहीं। हाँ, साकार मूल्य। नौवा पॉइंट है कि जब कहते हैं ईश्वर का सब दिया हुआ है, तो कोई मरता है, कोई बीमार होता है या कोई आपदा आती है, तब आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये रोना प्रूफ होना भी मासी का घर। हाँ, ये भी कोई आंसू ना आए तो ये भी कोई मासी का घर नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बनना, 10th पॉइंट है, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं। फिर और मुरली में ये भी कहा है बीके बनना या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना, ये कोई मासी का घर नहीं। तो बाबा ने ब्राह्मण ही बताया है, ब्राह्मण बनना मासी का घर नहीं है। 11वां पॉइंट है अपने आप को आत्मा समझ, बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। बाबा को तो याद कर लेते हैं, इधर दर्द होता है तो बाबा याद आता है, लेकिन उस दर्द के कारण। लेकिन मैं ये आत्मा, ये शरीर नहीं हूं, एक आत्मा हूं, वो और मेरा पिता है, ये समझना मासी का घर नहीं है। 12th है आधा कल्प के पतित, 21 जन्म के लिए पावन बनना और वो भी इस एक जन्म में, वो मासी का घर नहीं है। आधा कल्प के पतित। 13वां पॉइंट है राजधानी लेना, ये कोई मासी का घर नहीं है। 14वां पॉइंट है कि समझो किसी को पति बहुत मारता है तो उसको क्या लगता है कि इससे अच्छा क्या करूं, जाकर सरेंडर हो जाओ, बाबा के घर में रहूं। तो बाबा ने कहा ये कोई मासी का घर नहीं है। बाबा ने आगे उदाहरण दिया सन्यासियों का कि सन्यासी भी घर बार छोड़ते हैं लेकिन उनको भी याद तो आती ही है। तो बाबा ने कहा कि घर बार छोड़ना कोई मासी का घर नहीं है। तो 15वां पॉइंट है कि सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुख में होते हैं, आपस में सुख बांटते हैं, और भूत देते हैं दुख जो यहां पर होते हैं। तो काम भूत आदि मध्य अंत दुख देता है, इसमें बहुत मेहनत करनी है। तो जो दुख की दुनिया है उसको भूलना, इसकी जो मेहनत है इसको क्या करना है, बाबा ने कहा कि बहुत मेहनत का काम है, ये कोई मासी का घर नहीं है। सोलहवा योग, योग करना मासी का घर नहीं है। योग में भी बहुत प्रॉब्लम आते हैं, कौन कौन से? योग बताया है, योग मासी का घर नहीं। सत्रह वेबसाइट पर जाना है, वहां पर मासी का टाइप करना है, एंटर करना है तो सारी मुरलियां। फिर सत्रहवा पॉइंट है बाप के ऊपर बलिहार जाना, ये कोई मासी का घर नहीं है। इकट्ठे आ जा। फिर अठारहवा पॉइंट है कि अठारहवा पॉइंट है कि मौत देखना कोई मासी का घर नहीं है। खून का बाजार, मौत का बाजार गर्म होगा, खूने नाहक खेल होंगे, मच्छर सदृश मरेंगे, सरसों मिसल पीसे जाएंगे, तो ये जो होने वाला है, बाबा ने कहा कि ये इस खुली आंखों से देखना ये कोई मासी का घर नहीं है। अभी 19वां पॉइंट है, ये सब पॉइंट निकालना या लिखना ये कोई मासी का घर नहीं है। तो ये पॉइंट जो बाबा ने इस मुरली में यूज किया है, ब्रिजमोहन भाई जी के लिए यूज किया है, तो बाबा ने कहा देखो ब्रिजमोहन बच्चा जो है कितना अच्छा लिखता है, तो इस लिखने से क्या होता है, लोगों की परेशानी दूर हो जाती है, लोग खुश हो जाते हैं और उनको एक रिफ्रेशमेंट मिल जाती है। तो लिखना बाबा ने कहा यह भी कोई मासी का घर नहीं। तो किताबें लिखना या कुछ पॉइंट्स निकालना, वहां पर भी हम नोटिस बोर्ड पे दिखते हैं पुरुषार्थ के अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो निकाले हुए हैं, तो ये भी कोई मासी का घर नहीं है। 20 माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है। 21 हाँ धारणा करना कोई मासी का घर नहीं है। कितनी बातें हमें अच्छी लगती है कि ये पॉइंट इस भाई ने इस क्लास में, डेट भी याद रखते हो, उस क्लास को 50 बार भी सुन लेते हैं और हजारों लोगों को सेंड भी कर देते हैं, फॉरवर्ड भी कर देते हैं, लेकिन उसको खुद धारण करना मासी का घर नहीं है। 22 बाप का वफादार बनना, आज्ञाकारी बनना, ये भी कोई मासी का घर नहीं है। 23 पान का बीड़ा उठाना, ये भी कोई मासी का घर नहीं है। ये सेवा की पॉइंट है, जिम्मेवारी उठाना कि हाँ ये मैं करके दिखाऊंगा, तो ये भी कोई मासी का घर नहीं है। 24 नष्ट मोहा बनना मासी का घर नहीं है। 25 उच्च पद पाना मासी का घर नहीं है। 26 पांच विकारों को जीतना मासी का घर नहीं है। 27 गंधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है, इसलिए करो ही नहीं ना। लगता है उनको, लगता है हाँ हम तो कर लेंगे, मुरली में करना है। 28 शादियां करवाना इज्जत समझते हैं, पुण्य का काम समझते हैं, कन्यादान करना। तो बाबा ने कहा कि उस शादी में महात्माओं को बुलवाते हैं, हाथियाला पहनाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि काम ये महाविकार है, महाशत्रु है, इसका ऑर्डिनेंस निकालना ये कोई मासी का घर नहीं है। जो बाबा ने अपनी बात बताई, अपने लिए बताया कि ये कोई मासी का घर नहीं है, बाबा को तो मासी है नहीं, तो भी बाबा ने कहा कि ये मासी का घर नहीं है। 29 पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना ये कोई मासी का घर नहीं, ये भी बाबा की अपनी पॉइंट, अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ। और 13 कि धन कमाना मासी का घर नहीं है। आज की दुनिया में बहुत मेहनत करनी पड़ती है सभी को, तो बाबा ने इस मुरली में बताया हुआ है कि मन की मेहनत करते हो, मन की मेहनत से छूटो तो ये सब चीजें अपने आप आ जाएंगी, धन भी आपको मिल जाएगा। तो कभी मैंने सुना था ज्ञान सरोवर में, वेदांती बहन जी मुरली सुना रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हम माया से युद्ध करने के बजाय क्या कर सकते हैं, उसके साथ भी एक संबंध जोड़ लो। जैसे बाबा के साथ बहुत सारे संबंध जोड़ लिए, किसी ने मौसी का भी जोड़ा होगा बाबा के साथ, जिनको मौसी से दुख मिला हो, तो उन्होंने कहा था कि माया के साथ एक संबंध जोड़ लो मौसी का, और उसको कहो कि आधा कल्प हम अभी आपके पास रहे, अभी मेरी गर्मी की छुट्टियां पूरी हो रही है, पिताजी मुझे लेने के लिए आए हैं, एक विजुअलाइजेशन करो और उस माया मौसी से इतने प्यार से विदाई लो कि हम फिर मिलेंगे, उससे क्या करो प्रॉमिस करो हम फिर मिलेंगे हम फिर मिलेंगे, लेकिन अभी मेरे पापा मुझे लेने के लिए आए हुए हैं तो मुझे जाने दो। तो उस प्यारे पिता के साथ वो कहेंगी रहो थोड़ा सा, उसके साथ क्या करो आंसू भी बहा लो, बाय करो, उसको सी ऑफ करो, लेकिन प्यार से विदाई लो माया से, तो वो जरूर देंगी, जरूर देंगी, वो भी तो प्यार चाहती है ना। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। बाप किन किन बच्चों को क्या करते, कशिश करते? आपको कभी कशिश का अनुभव हुआ है? किन किन को हुआ है, कैसे हुआ आप बताओ। नहीं, वो तो अनुभव की बात है, नहीं कशिश तो कोई कहने की बात नहीं होती है। इतने लोगों को कशिश हुई है। देखो, बाबा ने एक मुरली में कहा कि मुझे देखते रहो और मैं आपको देखते रहूं, तो इसलिए उसको कैसे देखना है और वो हमें देखता रहे और वो हमको देखता रहे, कैसे होगा वो? तो नहीं, दिखाई नहीं देता है, लेकिन परमधाम में जब भी बाबा को याद करते हैं तो जैसे बाबा, जैसे झाड़ यहाँ भी है वहाँ भी झाड़ है, तो वहाँ जब भी बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमारे लिए बैठा हुआ है, तो जैसे याद करते हैं ना तो सारे ऊपर से नीचे हमारे साथ आ जाता है, और परमधाम में वो हमारे साथ आता है, फिर वो हम बहुत नज़दीक आ जाता है, फिर वो हमको अंदर से बिठा देता है, अपने अंदर ही बिठा देता है, और फिर उसमें से प्रेम, शक्ति, ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, सबकी जो फुहारा होता है ना हमारे पर छोड़ता है। फिर वो देखने में बहुत मजा आती है, और देखते देखते 5-7 मिनट तो हो ही जाती है। तो एक कशिश है एक, क्योंकि शुरुआत करते हैं ना तो शुरुआत करते करते उसमें लगन लग जाती है, तो ये कशिश है। दूसरा, बाबा इसको कशिश करता है जो चार्ट लिखता है, अगर चार्ट एक्यूरेट लिखता है तो बाबा को कशिश होती है। दूसरा है कि बहुत याद करते हैं। बाबा ने कहा कि सुबह में तो आधा घंटा पौने घंटे याद करती हो, तो बाबा चुंबक है वो आपको कशिश करता है, और बाबा को भी चुंबक है तो कशिश तो होती ही है, क्योंकि 5000 साल हो गया मिले हुए। तो बाबा ने एक बार मुरली में भी कहा था, बाबा जब अव्यक्त मिलन में आता है तभी कहते हैं मैं बच्चों के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। अभी वो इतने सारे बच्चे हैं, नए बच्चे भी हैं, पुराने बच्चे हैं, लेकिन जब ही आता है तो सभी को, आपने देखा होगा कि बाबा जब आता है अव्यक्त मिलन में सभी को दृष्टि देता है, और एकदम कोने में बैठा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति को बहुत चाहना होती है और इसकी इच्छा होती है मैं आगे आगे जाऊं, लेकिन वो आगे नहीं जा सकता है, लेकिन बाबा ऐसी कशिश देता है, उसकी इच्छा ही पूरी कर देता है। अनुभव है सबको, अनुभव है ना तो वो कशिश करता है। दूसरा है कि उसके श्रीमत जो मिलती है उस श्रीमत पर चलते हैं, तो आपने जिस मुरली में, जो भी मुरली चलती उसमें एक मुरली में बाबा ने जो हमको श्रीमत दी, कोई भी बात बताई, और उस बात को हम सारे दिन उसके पर रहते हैं, तो बाबा को कशिश होती है बच्चों की। और तीसरी, अब चौथी बात आई ना, और कशिश इसको होती है कि जो बाबा ने कहा था कि सारे दिन में एक आधा घंटा तो पौना घंटा तो अमृत वेले की बात है, कि सारे दिन वो मतलब कि फालतू व्यर्थ बातें नहीं सुनते हैं ना सुनाते हैं, तो बाबा उसको भी कशिश करते हैं। और दूसरा, बाबा इसको कशिश करते जो बाबा की वो जो बैलेंस रखते हैं, याद और सेवा का बैलेंस रखते हैं, क्योंकि याद में जब बैठते हैं तो बाबा की याद होती है, कि जब सेवा में हम रहते हैं तो बाबा की याद बहुत बार भूल जाते हैं, तो जो बाबा की याद में रह कर के सेवा करते हैं उसको भी कशिश का अनुभव होता है कि बाबा हमें कशिश करता है। दूसरा है, घर गृहस्थ में रहते हैं और बाबा ने कई बार कहा है कि जो बांधेली होती है उसको भी बाबा की कशिश होती है, बाबा उसको भी कशिश करते, ताकत देते हैं, तो बांधेली होती है उसको भी कशिश होती है, क्योंकि बहुत ही उसको घर में बहुत परेशानियां होती है, तभी बाबा की कशिश का अनुभव होता है। और दूसरा है कि जो बहुत ही बाबा एक बार कहता है कि जब साधारण साधारण चलते हैं, क्योंकि तो मैं भी घन डालता हूँ, जब समस्या आती है तो बाबा बाबा कहते हैं, तो बाबा एक कशिश करने का एक साधन रखा है कि विघन थोड़ा थोड़ा आता है, तो ये भी कशिश का साधन है। दूसरा है कि कशिश इसको होती है कि जो सारे दिन लोगों की बहुत सेवा करते हैं, क्योंकि बाबा की सेवा करना चाहे स्थूल सेवा हो, चाहे सूक्ष्म सेवा हो, चाहे सकस देने की सेवा हो, चाहे कोई भी सेवा हो, तो बाबा की, बाबा ने कहा है कि मेरी मतलब की मददगार बच्चे हैं, उसकी मुझे, मैं उसको कशिश करता हूँ, मदद करता हूँ। तो इस प्रकार बाबा बहुत सारी कशिश करता है। ओम शांति।
ओम शांति। दृष्टि की जब बात होती है तो आप एक महाभारत का सीन नजर में आते हैं, आप सभी देखें, जब दुर्योधन महाभारत लड़ाई के पहले माँ के पास गए थे जी हमें विजयश्री का आशीर्वाद दो, तो माँ तो विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन दूसरा एक विधि बताया, बोला जाओ नदी में स्नान करके निर्वस्त्र होके आ जाओ। तो आ रहे थे, किंतु कल एक भाई बोला ना ड्रामा, वो बीच में ड्रामा शुरू हो गया और श्री कृष्ण पहुंच गए, बोले ऐसे ही तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो हमारे सभ्यता के विपरीत है। तो उन्होंने क्या क्या, केला का पत्ता लगा के फिर माँ के पास आए, माँ तो पट्टी बांधा हुआ था, तो उस टाइम उन्होंने पट्टी खोल के उन्होंने आंख से दृष्टि देके उसको सारे शरीर का वज्र कर दिया ताकि उसको निधन नहीं कर सके। लेकिन जब आंख खोल के देखा तो क्या हुआ, माँ को दुख हुआ, बोले ये क्या करके आए, तो बोला था तो तेरे को निर्वस्त्र होके आने के लिए, ये क्या कर दिया, बोला जो हो गया वो भी ड्रामा। तो उन्होंने किया दृष्टि से ऐसा शक्ति दिया ताकि उस शरीर को कोई ठेस नहीं पहुंचा सके, आघात नहीं कर सके। यहां भी हम लोग देखते हैं जब ब्राह्मण जन्म लेते ही हमारे दृष्टि क्या हो गया, लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन हो गया, क्योंकि जब हम पहली बार सेंटर पर गए एक भाई एक बहन को ऐसा करके देख रहे हैं, तो मैं बोला ये क्या शिष्टाचार है। हाँ, तो हम लोग का घर में सिखाते हैं माँ बहनों ये मातृ समान उसको देखने का, आंखें नीचे रखने का, और यहाँ उल्टा, तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य लगा। तो वहाँ यहाँ भी एक भाई हमारे यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, है तो अपने कला में निपुण है, लेकिन जब वो अहमदाबाद हमारे सेंटर पे आए तो दो चार बी के भाई बने थे और बहने ने स्वागत किया, तो वैसा भी फूल चंदन लेके दृष्टि देके स्वागत कर रहे थे, उनको भी आश्चर्य लगा ये क्या शिष्टाचार है ये लोग का, लेकिन ये तो लौकिक हमारा दृष्टिकोण नहीं है, ये हमारा अलौकिक बात है। तो ब्राह्मण जन्म लेते हमारा दृष्टि क्या हो गया, लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन हो गया, एक जादू लग गया ताकि हमारे दृष्टि में कुछ परिवर्तन हुआ है। इसीलिए भक्ति मार्ग व शास्त्र में भी दिखाते हैं हमारे शरीर से जो शक्ति निकालते हैं, कुछ अंगों से निकालते हैं, जैसे हाथ से, पैर से, आंख से, मुख से। इसीलिए जब कोई रेस्पेक्ट माने सम्मान किसी को देना होता है बड़ों को, हम लोग झुक करके उसको पैर चरण का स्पर्श करते हैं, तो पैर से भी निकालते हैं हाथ पर, तब वो सिर पर हाथ रखते हैं, वो भी वहाँ शक्ति का लेन देन होता है। दूसरा, जो महापुरुष ने दृष्टि के द्वारा दृष्टिपात करते हैं ताकि उनका सारे शक्ति उसके द्वारा देते हैं, हाथों के द्वारा, जैसे हमारे दादी प्रकाश मणि को बाबा ने हाथ के हाथ देके दृष्टि मिला के उन्होंने अव्यक्त हो गए, ये भी एक प्रकार। तो यहां भी हम लोग देखते हैं जो दृष्टि कितने प्रकार की होता है, हमें सात प्रकार दृष्टि के लिए बोला है, अभी आप ये अलौकिक दृष्टि हो गया। दूसरा वात्सल्यमय दृष्टि, माँ बच्चों को कैसे देखते हैं, स्नेह ममता प्यार की दृष्टि से। दूसरा बाबा एक मुरली में बताया, जो माँ जब गर्भ में होते हैं उसका कितना ध्यान रखते हैं, माँ के गर्भ में जब बेटा होता है ना, गर्भवती होते हैं, तब उस टाइम उसका कितना ध्यान रहता है, बच्चों का कुछ आंच न लगे, वो है कितना हर पल हर टाइम दुख में न हो, सुख खाना पीना अच्छा रखता है। उसी प्रकार ये जितने भी हमारे ज्ञान के गर्भ में बच्चे हैं, माने जिनको हमने पैदा किया है गर्भ ज्ञान के द्वारा, अथवा जो भी भक्त लोग आने वाले हैं, उसको हमें कैसे पालन करना है, कितना ध्यान रखना है, कितना स्पष्ट हमें जागरूक रहना पड़ेगा, ताकि हमारे मुख से कोई कटु वचन ना निकले, हमारा कर्म बोल चाल स्वभाव संस्कार सब नजर करते हैं, ना तो माने कुछ भी त्रुटि ना हो। जैसा स्टेज पर एक्टर है, पार्ट प्ले करते हैं, उसी प्रकार रहना पड़ता है। तो ये भी एक प्रकार वात्सल्यमय दृष्टि है, ताकि हर एक भक्त को प्रजा को संतान को हम ऐसा स्नेह प्यार की दृष्टि से देखें। तीसरा, बाबा कभी कभी बोलते हैं ना, इविल ना देखो, बुरा ना देखो, तो क्या करने का, सिविल, सिविल आए, ये भी एक प्रकार दृष्टि है। तो बाबा हम लोग को क्या करते हैं, बोलते हैं तुम सब अनार्य नहीं हो, आर्य, तो तुम्हारा दृष्टि कैसा होना चाहिए, एकदम सिविल प्योर होना चाहिए, ये भी एक प्रकार दृष्टि है। तो ये सब किस कुल के हैं, सब देवी देवता कुल के हैं, तो आर्य, आर्य माने देवी देवता, तो इसीलिए उसी नजर से बाबा जैसा भविष्य को देखते हैं हर बच्चे को, उसी नजर से उसको सम्मान देते हैं, कुछ भी खराब अवगुण भी कितना भी होना क्यों, लेकिन उसको ऊंचा उठाते हैं। हाँ, तो ये हो गया। चौथा है दैवी दृष्टि, वो क्या है, है? हाँ, जैसा बाबा जैसा देखते हैं ना, ये सब देवी देवता बनने वाले हैं, ये सर्वगुण संपन्न है, सोलह कला संपन्न है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो देवी देवता का जितना गुण है, जितना 36 प्रकार हो, 56 हो, जितना भी है, वैसा गुणवान गुणवती की नजर में देखना है हमें। तो दैवी दृष्टि से देखने से क्या होगा, तो हमारे अंदर जो कितना भी अवगुण है वो भी निकल जाएगा। तो ये भी एक पूर्वजपन की निशानी है, दैवी गुण देखना है, हर एक की विशेषता देखना है। चौथा, पांचवा, एकाग्रता की दृष्टि। एकाग्रता की बात जब आते हैं, तब अर्जुन को आप उदाहरण देख सकते हैं, तो सारे माने उनका आचार्य जो उनको बोला था, द्रोणाचार्य, सबको क्या देख रहे हो, तो सब ने बोला सब घास पेड़ पौधे सब कुछ दिख रहे हैं, पक्षी भी दिख रहे हैं, लेकिन जब अर्जुन के बारी आया तब तो क्या दिखा, उन्होंने बोला सिर्फ पक्षी देख रहा हूँ। फिर पूछा उसके बाद क्या देख रहे हो, ना सिर्फ पक्षी की आंख दिख रहे हैं, उसके बाद पूछा क्या देख रहे हो, ना उसके पुतली देख रहे, तो अभी लक्ष्य सिद्धि करो, तो उन्होंने लक्ष्य वेद किया और उन्होंने विजयी हो गया। तो बाबा हम सबको क्या बोलते हैं, तुम भी अव्वल नंबर अर्जुन हो, अकेला अर्जुन नहीं है, तुम सब कहाँ आए हो, तुम्हारे आंख की पुतली कहाँ, एक बाबा के साथ टिका हुआ है। हाँ, तो सब तुम लोग भी सब युद्ध के मैदान में हो, इसलिए अर्जुन बनकर तुम्हारे दृष्टि कहाँ होना चाहिए, लक्ष्य के ओर होना चाहिए। तो एक लक्ष्य के ओर जब चलेंगे तो हमारा विजय विजय होगा। फिर छठा, एक बाबा बोलते हैं तुमको दूर दृष्टि होना चाहिए, फार साइटेडनेस की दूरादेशी बुद्धि, तो ये भी नजर। तो आपने कभी बोला था कि क्लियर ऑडियंस ना, क्लियर भाई, हाँ मुझे इतने इंग्लिश नहीं आते, तो यहाँ बैठे भी हम भविष्य को देख सकते हैं। हाँ, दूरदर्शन, हाँ, तो दूरदर्शन कैसा होता है, जैसे बाबा बोलते हैं ना, तुम यहाँ बैठे भविष्य जो सतयुग में क्या है नजारे के देखो, यहाँ बैठे तुम सूक्ष्म वतन में चले जाओ, वहाँ बाबा से मुलाकात करो, यहाँ बैठे बैठे परम धाम चले जाओ, तो ये क्या है? दूरदर्शन। हमने जगदीश भाई का एक क्लास सुना था और उनके लिए भी कुछ हम बातचीत सुना है। जब गांधी जी शरीर छोड़ने वाला है, उनको पहले से पता चल गया था अब ये शरीर छोड़ने वाला है गांधी जी। ब्रह्मा बाबा के भी है, वो भी पहले से, तो घर में जब उनके सेंटर में फोन आया तब उन्होंने जानबूझ के उठाता नहीं, बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो वो पहले से जान चुके थे। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, बाबा बोलते हैं भविष्य के नज़ारे तुमको देखने आता है, भविष्य में क्या घटना घटने वाला है, अभी से तुम याद करके अपना पुरुषार्थ करके अपना खामियां निकालो। आज मुरली में है ना, तुम अपना रजिस्टर निकालो, कितना खामियां होता है वो भी बाबा को बताओ, तो वो भी सुधारने के लिए तुमको युक्ति बताएंगे। तो ये भी दूरदृष्टि की बात होता है। कितना हो गया? अच्छा, सातवां है मुक्ति, जीवन मुक्ति। किसी को देखो, कोई जिज्ञासु आता है, कोई नया व्यक्ति आता है, ऐसा नजर में देखो ताकि एक झलक में उसको मुक्ति और जीवन मुक्ति का साक्षात्कार हो जाए। तो इसी मुक्ति, जीवन मुक्ति की दृष्टि है, तो ऐसा दृष्टि दो वो आपको नहीं देखे, आपके अंदर बाबा को देखे, तो इसको कौन सी दृष्टि आप बताएंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी एक प्रकार दृष्टि की, कल्याण की भावना की दृष्टि हो, शुभ दृष्टि हो। हाँ वही यार, कि वही तो बोल रहा हूँ ना। अच्छा, रहम की दृष्टि। तो ऐसा बाबा ने बहुत सारे दृष्टि की भी तो बात की है, लेकिन कभी कभी बोलता है तुम्हारे अंदर, कभी जैसा सांप को देखते हो तो सांप को मणि को देखो और उसका सांप को नहीं देखो। सुनो सुनो, आप तो सांप पकड़ने वाला है, तो कौन सी दृष्टि से देखना है? तो पहले हाँ, वो भी हमारे मित्र है, क्योंकि उसका मणि को जब देखेंगे तब तो किसी का भी मस्तक, बाबा बोलते हैं ना तुम्हारा दृष्टि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर। मणि को जब देखेंगे तो मणि का गुण आएंगे। अगर शरीर को देख लिया, देह को देख लिया, सांप देखने से क्या होता है? काटता है, जहर भी फैलता है, तो वो काम करेगा। इसीलिए म्लेच्छ बुद्धि नहीं होना चाहिए। तो हमारा दिव्य बुद्धि जैसा मणि को देखने का दृष्टि, वो भी एक प्रकार दृष्टि होता है। पूरा करो, ठीक है। ओम शांति।
ओम शांति। आखिर वो दिन आया आज तीन दिन से। तो एक कहानी थी जब हम ज्ञान में आए थे, सबसे पहले चुनी थी। हमारा टॉपिक है कि ज्ञान में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, उल्टी से उल्टी बातें हैं जो हमें नहीं बोलनी है। तो एक कहानी थी जो मैंने स्टार्टिंग में, जब मैं ज्ञान में आया था तो मुझे व्हाट्सएप पे आई थी। वो कहानी है कि एक राज्य होता है, वहां पे वो राजा ना हर साल एक लंगर लगाता है, मतलब अपने दरबार में। तो साधु संत जो होते हैं उनको, उनके लिए लंगर लगवाता है, अच्छे से पकवान बनवाता है हर साल। तो एक साल भी ऐसा ही होता है, साधु सन्यासी सब, वो राजा सभी को बुलाता है वो देने के लिए। तो वो राजा सभी को मतलब बुलाता है खाने पीने के लिए। तो क्या होता है, जो दरबारी होते हैं उस राज्य के, तो जो बनाने वाले होते हैं हलवाई लोग वहाँ के, तो वो बनाते हैं। तो जब वो बना रहे होते हैं खाना, तो वहाँ पे एक जंगल होता है साइड पे, तो वहाँ पे एक सांप भी होता है। तो वो सांप एक चूहे को झपटने के लिए उसके ऊपर कूदता है, तो उसके ऊपर एक चील आ जाता है, सांप को पकड़ के ले जाता है। चील होता है ना सांप को खाने वाला, तो वो उसको पकड़ के ले जाता है, उड़ाते हुए ऊपर से ले जाता है। और क्या होता है कि सांप अपने आप को बचाने के लिए जहर फेंकता है ऊपर उसको, और वो जाता है सीधा खाने में, ठीक है। और वो खाना खा लेते हैं वो साधु संत, वो सब किसे मर जाते हैं। तो ये सारा वाक्य जो भी होता है, ये सब ऊपर पहुंचता है भगवान के पास, काल्पनिक कहानी। तो उसका जो भगवान का साथी होता है वो कहता है कि ये दोष इसको दें हम, ठीक है। वो सांप ने तो अपने बचाने के लिए विष फेंका था, ठीक है। उन राजे का भी कोई दोष नहीं, उसको कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। वो जो बना रहे हैं दरबारी, उनको भी कुछ पता नहीं है, जो तो ऊपर से गिरा के। तो वो सोच में पड़ जाते हैं अभी किसको दें दोष। तो अगले साल फिर बारी आती है, तो वहां पे एक ना एक मतलब माता होती है, तो साधु सन्यासी लोग फिर आते हैं खाने के लिए अगले साल। तो वो क्या बोलती है कि नहीं नहीं उधर नहीं जाना, वहां पे ना वो राजा होता है, वो सबको जहर खिला के मार देता है। तो राजा बोलता है सबका सब दोष इसके ऊपर डालो, वो जो, क्योंकि उस वाक्य से किसी को खुशी नहीं हुई बोलने में, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, पर उस माता को वो बोलने में टेस्ट आया, मतलब उसको उमंग आया ना, कुछ बोला मैंने ये चीज। तो इसमें हम गिनेंगे चुगली, जो एक जैसे मैंने पॉइंट गिना था चुगली पॉइंट, जैसे गांव में होता है ना एक वो होता है पीपल का पेड़ होता है, वहां पे सभी लोग बैठ जाते हैं चुगली पॉइंट, मतलब चुगली करने के लिए एक दूसरे की चुप्पा, मतलब उसको चुगली पॉइंट भी कई बार शहर में चुगली पॉइंट बोलते हैं, तो गोसी पॉइंट। तो वहां पे क्या क्या बातें चलती हैं कि हमें हमारे घर में ये चल रहा है, उसके घर में ये चल रहा है, उसके घर में ये चल रहा है, उसका बेटा ये कर रहा है। उसी प्रकार ज्ञान में हम जब आते हैं तो कुछ संस्कार हमारे ज्ञान में भी आ जाते हैं ऐसे वाले कि जी जहां जहां भी हमारी सेवा लगती है, जी जिस भी हम सेंटर पे होते हैं, तो देखने की आदत तो होती है हर एक को। तो हम देखते देखते क्या करते हैं कि एक दूसरे से बात करने शुरू कर देते हैं कि हाँ जी हमारे जो इंचार्ज हैं वो ऐसे करते हैं, हमारा सेवाधारी ऐसे करता है, हमारी बहन ऐसे मुरली सुनाते हैं, वो अच्छी सुनाते हैं, ठीक है आज उन्होंने इसको ये बोल दिया। दूसरा आता है कि जिस गली में हमको जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना। क्या होता है कि हम जब बैठते हैं, हाँ जब मैं यहाँ पे बैठा था कहीं पे, तो क्या हुआ कि ये जो आजकल चल रहे हैं न्यूज़ की रिपोर्ट्स, तो क्या होता है कि ये जानने की इच्छा हमको अभी पता चला है कि बाबा ने बोला है कि एक बार ना दादी जान ओ, कोई दादी थे वो बाबा के पास गए और उनको बोला कि बाबा बाबा संसार में ये कुछ चल रहा है। बाबा बोलती बच्ची तुमको सिर्फ वही सुनना है जो बाप तुम्हें सुनाएंगे, जो तुम्हारे लिए सही है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं ना माया जैसे बोलते हैं कि ज्ञान, ये न्यूज़ भी सुनो, ये जितना सुनोगे उससे हम ज्ञान देंगे, ज्ञान के मतलब जितनी ज्यादा अंदर भरेंगे वो ज्ञान के रूप में हम कैसे दे सकते हैं, कि हमें उतना ही लेना है जितना बाबा मुरली द्वारा हमको देता है। और दूसरा आता है कि बैठ करके झरमुई झरमुई होना। तो हम बैठ जाते हैं, बैठे किस चीज के लिए हैं हम, मुरली चिंतन के लिए। और बातें चलती हैं कि एक बात होती है ना, जब हम किसी से भी पहली बार भी मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, आपका नाम क्या है, ठीक है आप कहाँ से हैं, आपकी क्या उम्र है, आपने क्या पढ़ाई की है, अपने घर में कौन कौन है, मतलब ये सब व्यर्थ की बातें हैं, उल्टी सुलटी बातें हैं जिनका एक ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं। हाँ अगर कोई फॉर्म वगैरह भरना तब ठीक है, जब कोई फॉर्म वगैरह भरना तब ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे आता है चाहिए चाहिए, ये मैं जगदीश भाई की बुक पढ़ रहा था। तो भक्ति मार्ग में हम क्या बोलते हैं भगवान को, हे दुखकर्ता सुखकर्ता हमको मुक्ति दो, जीवन मुक्ति दो। अगर हम यहाँ पे लौकिकता में भी किसी के साथ बैठ जाएं तो क्या होता है, 10 मिनट के भी बैठ जाएं उसको यही चाहना होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। ज्ञान मार्ग में भी आकर के भी हम ये चीज देखते हैं कि हमको ये चाहिए, इसको ये करना चाहिए, है ना, उसको वो करना चाहिए। और क्यों क्या के ये जो चक्कर है कि क्यों क्या की बातें, कि ये क्यों, हम बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दे भी दिया कि ये ड्रामा है, फिर भी हमारे क्वेश्चन उठता है कि ये क्यों, 10 लोगों को पूछेंगे ये क्यों। मैं भाई से जी पूछ रहा था कि कोई भी प्रश्न होता है तो वो बोल रहे कि प्रश्न का उत्तर आपके अंदर ही है, पहले नंबर पे आप प्रश्न को बोलना चाहते हैं, उसका उत्तर नहीं सुनना चाहते। तो आप प्रश्न को बोलना चाहते हैं, मतलब हम किसी को होता ना एक प्रश्न, उत्तर जानने की इच्छा नहीं होती, प्रश्न बोलने की इच्छा होती है, भी हम प्रश्न बोले, हमारे मन में कोई प्रश्न है, वो हमारे 10 उत्तर भी देगा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। तो वो बठिंडा में भी आए थे एक बार, मैं पंजाब बठिंडा से, तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार सूक्ष्म वतन के बाबा के पास गया, तो बाबा ने ऐसे करके ऐसे बैठा था, तो वो बोले मैंने कहा बाबा आप ऐसे क्यों बैठे हो, तो बाबा बोले बच्चे क्या करूं मैं, सबका सब कुछ तो दे दिया, ज्ञान भी दे दिया, शक्तियां भी दे दी, सब कुछ दे दिया, फिर भी मांग रहे हैं एक दूसरे से। यही उल्टी सुलटी बातें, बाकी और भी हैं, अपनी अपनी भी हर एक की हैं। थैंक यू, पहली बार बोला, ओम शांति।